आज है 3 मार्च, दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला।
बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है।
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार हुए रिहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विरोध के बावजूद उत्तर कोरिया ने किया मिसाइलों का परीक्षण। और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो नहीं रहे।
क्लीन क्रिकेट खेलते थे, ऐसे नहीं कि हम जो बैट पैड बैटिंग करते वैसे नहीं थे, काफी स्ट्रेट बैट से खेलते थे।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आज कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेस की पूर्व सरकारों की योजनाओं पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि सदन को न चलने देने से विपक्ष का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्तव्यों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर कई महत्वपूर्ण बिल पारित नहीं होने देने के आरोप लगाए। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने आर्थिक कारणों से आने वाले गैरकानूनी प्रवासियों से यूरोप नहीं आने की चेतावनी दी है। यूरोपीय संघ के प्रवासी संकट को सुलझाने के लिए उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रवासियों को मानव तस्करों पर भरोसा कर अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। प्रवासी संकट पर समझौता करने के मकसद से ग्रीस और तुर्की की यात्रा पर गए डोनाल्ड टस्क ने कहा कि गैरकानूनी प्रवासी अब ग्रीस से आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
Here from Athens, I want to appeal to all potential illegal
यहाँ एथेंस से मैं आर्थिक कारणों से आने वाले संभावित प्रवासियों से अपील करता हूँ कि आप यूरोप मत आइए, तस्करों का भरोसा मत कीजिए, अपने जीवन और धन को खतरे में मत डालिए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ग्रीस और अन्य यूरोपीय देशों के रास्ते आप आगे नहीं जा सकते। शेंगेन के नियम जल्द ही यूरोप में लागू होंगे। ये थे डोनाल्ड टस्क के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के कैले में सुरक्षा और प्रवासी संकट पर बातचीत के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलां और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की मुलाकात हो रही है। करीब 4,000 प्रवासी फ्रांस के कैले में जंगल के नाम से प्रसिद्ध प्रवासी कैंप में बुरी स्थिति में रह रहे हैं। फ्रांस के वित्त मंत्री इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिटानी अखबार से कहा था कि अगर ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ने का फैसला किया तो फ्रांस प्रवासियों को बिना रोक टोक ब्रिटेन में प्रवेश करने देगा। जर्मनी की पुलिस ने कहा है कि बर्लिन में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए भर्तियां करने के संदिग्ध एक जर्मन डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। उसने जिन लोगों को भर्ती किया था उनमें एक जर्मन शख्स शामिल है जिसने आत्मघाती हमला कर 12 इराकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। माना जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए 33 वर्षीय डॉक्टर ने इस आत्मघाती हमलावर को इराक जाने के लिए खर्च और हथियार और विस्फोटक मुहैया करवाए थे। तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल में पुलिस मुख्यालय पर हमला करने वाली 2 महिलाओं पर गोलियां चलाई हैं। उन दोनों की मौत हो गई है। तुर्की की पुलिस के मुताबिक 2 महिलाओं ने इस्तांबुल में पुलिस मुख्यालय पर ग्रेनेड फेंके थे और फायरिंग भी की थी। पुलिस का कहना है कि ग्रेनेड फेंकने के बाद ये महिलाएं वहां से भाग निकली और इस्तांबुल के बायराम पाशा इलाके में एक इमारत में छिपी हुई थी, जिसके बाद वहां उन्हें मार दिया गया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए गए संबोधन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेसी नेताओं और उनकी योजनाओं का हवाला देते हुए जोरदार हमला किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के दौरान उन्होंने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान का हवाला दिया। करीब एक घंटे के अपने संबोधन में उन्होंने जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला की आत्महत्या का जिक्र नहीं किया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के आगरा में दिए गए भाषण की सीडी जांच में कुछ भी भड़काऊ नहीं पाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में कोई नाथूराम गोडसे को कैसे पूज सकता है। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं विनीत खरे।
अपने एक घंटे लंबे चले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में लगातार हंगामे पर विपक्ष और खासकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उसके लिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं जैसे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के भाषणों का सहारा लिया।
बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो। जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चिक करके कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही
है। नरेंद्र मोदी ने नेशनल वाटरवे बिल, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, जीएसटी बिल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के पारित न होने पर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूलों में टॉयलेट बनाने के अभियान, बांग्लादेश सीमा विवाद, गांवों में बिजली पहुंचाने जैसी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 60 सालों से देश में ये समस्याएं हैं लेकिन कुछ नहीं किया गया है और आज जब उनकी सरकार काम कर रही है तो विपक्ष विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये पिछली सरकारों की विरासत है। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि गर्व के साथ मनरेगा की चर्चा की जाती है लेकिन इसका इतिहास 50 साल पुराना है।
इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थैंक्स मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी बात की है, एक तो स्कीम्स के मजाक उड़ाए गए, दूसरी चीज दूसरों को टॉन्ट मारने में ही अपना समाधान समझे।
उधर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में कहा कि राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के आगरा में दिए गए भाषण की सीडी की जांच की गई और उसमें कुछ भड़काऊ नहीं पाया गया है।
अरुण माहौर नामक एक दलित जिसकी हत्या हुई थी उसकी शोक सभा थी, उस शोक सभा में भाग लेने के लिए यह भी गए थे, लेकिन जो हमने सीडी देखी है और सीडी में रामशंकर कठेरिया के स्टेटमेंट को हमने गौर पूर्वक देखा है, इन्हीं से संबंधित हमने सीडी मंगवाई थी, अपने अधिकारियों को भी देख दिया, देखिए इस सीडी को। और सीडी को देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने भी मुझे बतलाया कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस कारण यह कहा जा सके कि रामशंकर कठेरिया ने कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच दी है।
इससे पहले राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने रामशंकर कठेरिया के आगरा में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाई थी। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
उधर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें कल दिल्ली हाईकोर्ट ने 10,000 के मुचलका भरने के साथ अंतरिम जमानत दी थी। हमारे साथ लाइव अब स्टूडियो में है विनीत खरे, जो इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। विनीत, कल देर शाम जो है उन्हें जमानत देने की खबर आई थी सशर्त, और आज उनकी रिहाई भी हो गई है। क्या जानकारी है आपके पास?
थोड़ी देर पहले रिहाई हुई है, 6 महीने की अंतरिम जमानत है और कई कंडीशंस हैं उनकी, जो एक्टिविटीज उन पर वॉच रखा जाएगा, देखा जाएगा कि 6 महीने क्या करते हैं, उसके बाद ये परमानेंट होगी। अभी आपको पता हो ये 9 फरवरी का मामला है जब एक विवादास्पद रैली हुई थी, वहाँ पर कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगे थे। लेकिन कन्हैया की रिहाई के बाद जो बाकी के 2 छात्र हैं, उमर खालिद और अनिरबान, उनकी रिहाई को लेकर अभी भी सवाल बाकी, दोनों अभी जुडिशल कस्टडी में हैं और इनकी रिहाई की मांग को लेकर लगातार जो जेएनयू के छात्र हैं, स्टूडेंट्स यूनियन है, लगातार प्रदर्शन करता रहा है। उनकी मांग है कि जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें वापस लिया जाए और इन छात्रों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।
जी, कन्हैया तो रिहा हो गए हैं और उनके 2 साथी जैसे कि आपने बताया कि अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कन्हैया जो हैं अभी सीधा जेएनयू जा रहे हैं, तो बता पाएंगे वहाँ पर क्या माहौल है?
क्योंकि उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में, जैसा मैं बताया जा रहा है, कड़ी सुरक्षा के बीच में जेएनयू ले जाया जा रहा है। आपको पटियाला हाउस जो वहाँ पर वाकया याद होगा जब कन्हैया पर हमला हुआ था, जो लॉयर्स थे, वकील थे, उन्होंने हमला किया था, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनको ले जाया जा रहा है। बहुत ही सीक्रेट तौर पर ले जाया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहाँ पर 9:30 बजे रात में एक मार्च का आयोजन होगा जिसमें कन्हैया हिस्सा लेंगे। एक विक्टोरियस लोग जो उनके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनका स्वागत करेंगे। और मेरी बात हुई एक छात्र से जेएनयू में, और उनका कहना है कि जो बाकी के 2 छात्र हैं उनको जल्द से जल्द रिहा करने की मांग उठाएंगे और मांग रखेंगे, और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं देशद्रोह के उसे जल्द से जल्द वापस लेने की बात रखेंगे।
तो देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार हुए रिहा। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत इस जानकारी के लिए। और दिल्ली से निकल कर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहाँ के नारायणपुर जिले में संदिग्ध माओवादियों द्वारा कथित रूप से 16 ग्रामीणों की हत्या के मामले में पुलिस के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बस्तर के आईजी पुलिस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमले में 16 से 20 लोग मारे गए हैं, लेकिन आज राज्य के गृह सचिव ने कहा कि नारायणपुर में केवल 5 ग्रामीण मारे गए हैं। सीधे चलते हैं रायपुर स्थानीय पत्रकार आलोक पुतुल के पास। आलोक जी, ये बताइए कि ये बड़ी असमंजस की स्थिति है यहाँ पर, ये जो संख्या बताई जा रही है कहाँ से आई है?
जी, मंगलवार को नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने दावा किया था कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन से माओवादी बौखलाए हुए हैं और उन्होंने अबूझमाड़ के इलाके में कम से कम 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। इसके बाद बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने बुधवार को दावा किया कि नारायणपुर में संभवतः 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है। इसके बाद उन्होंने 17 से 20 ग्रामीणों की हत्या की जाने की भी बात कहते हुए।
जी आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है आलोक पुतुल से हमारा संपर्क कट गया है। हम आगे उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और अब देख लेते हैं कार्यक्रम संबंधी, एक सुन लेते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना।
क्या परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ने से मजबूत होंगी महिलाएं? भारत जैसे परंपरागत समाज में क्या महिलाएं आजादी महसूस करती हैं? विश्व महिला दिवस से पहले इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 5 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1-800-11-7000 और 1-800-102-7001 पर।
और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के बाद कम दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है। इससे कुछ देर पहले ही सुरक्षा परिषद ने प्योंगयांग पर 20 साल में पहली बार कुछ नए कड़े प्रतिबंध लगाए थे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी तट पर समुद्र में कुछ नई मिसाइलों के परीक्षण की पुष्टि की है। कई जानकारों की नज़र में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने दोनों देशों के संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया है। तो उधर जापान का कहना है कि उनकी निगरानी जारी है। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं अमर शर्मा।
उत्तर कोरिया के नए परीक्षणों से कोई सीधा खतरा नहीं बताया गया है, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र के कदम के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कम दूरी की मिसाइलों की परीक्षण की इजाजत है, लेकिन लंबी दूरी की मिसाइलों की नहीं। उत्तर कोरिया के कम दूरी के मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया की सेना के एक प्रवक्ता मून सांग ग्यून ने इन परीक्षणों की पुष्टि की और कहा कि उन्हें इनसे कोई सीधा खतरा नहीं है।
उत्तर कोरिया ने वनसान इलाके से पूर्वी समुद्र की ओर छोटी दूरी वाली कई मिसाइलें दागी हैं। हमारी सेना पूरी तरह चौकन्नी है और किसी अन्य कदम का निरीक्षण कर रही है।
मून सांग ग्यून के शब्द। जापान की सरकार के प्रवक्ता योशी हिदे सुगा ने कहा है कि उनके देश की सुरक्षा को तत्काल कोई खतरा नहीं है।
हमारे देश की तरफ उड़कर आने वाली किसी चीज की पुष्टि हमने नहीं की है। हम ये समझते हैं कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई असर पड़ता हो। हम किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए सतर्क रहते हैं। अभी भी हमारी चौकसी और निगरानी जारी है।
योशीहिदे सुगा के शब्द। उत्तर कोरिया ने छोटी दूरी के ये 6 मिसाइल परीक्षण संयुक्त राष्ट्र के उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के कुछ ही घंटों बाद किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव आम सहमति से पारित कर दिया। उत्तर कोरिया ने जनवरी में परमाणु परीक्षण और फरवरी में एक रॉकेट परीक्षण किया था, जिसके जवाब में सुरक्षा परिषद ने अपना रुख कठोर किया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया पर इन कड़े प्रतिबंधों के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में अशांति बढ़ेगी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इस बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही हैं कि लगाए गए नए प्रतिबंध कितने प्रभावी होंगे। जियोंग हेइंग सून कहते हैं, अच्छा हो कि उत्तर कोरिया इन आर्थिक प्रतिबंधों पर उचित प्रतिक्रिया दे। अगर आप दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच जारी गतिरोध पर ध्यान दें तो मेरी नज़र में इस प्रतिबंध से स्थिति खराब ही होगी, क्योंकि उत्तर कोरिया के अंदर एक प्रतियोगिता है कि वहां कौन सत्ता के प्रति ज्यादा वफादार है। रोह क्यूंग हो कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रतिबंध पहले से ज्यादा कड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया पर इसका असर होगा। ये थी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के कुछ बाशिंदों की प्रतिक्रिया। संवाददाताओं का कहना है कि नए प्रतिबंध उत्तर कोरिया के खिलाफ बीते दो दशकों में सबसे कठोर प्रतिबंधों में से एक हैं। नए प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया से आने जाने वाले सभी कार्गो की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा 16 नए व्यक्तियों और 12 अन्य संगठनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया को हर तरह के छोटे और हल्के हथियार बेचने पर भी रोक लगाई गई है। प्रतिबंध में ये भी कहा गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल होने पर उत्तर कोरियाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया जाएगा।
उत्तर कोरिया ने किया कम दूरी की मिसाइलों का परीक्षण। ये थे अमर शर्मा।
बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो कार्यक्रम आप शॉर्टवेव 16, 19, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 7255, 11995, 11700, 7565, 7600 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज की विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ, और फिर से लौटते हैं छत्तीसगढ़, जहां से हमारे साथ हमारे स्थानीय पत्रकार आलोक पुतुल जुड़ चुके हैं। और खबर यह है कि वहां संदिग्ध माओवादी द्वारा कथित रूप से 16 ग्रामीणों की हत्या के मामले में पुलिस के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी तो आलोक, आपको हमारी आवाज़ आ रही है, तो बताइए कि ये संख्या को लेकर क्यों इतनी असमंजस की स्थिति है वहां पर?
अब आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कलवरी ने बुधवार को दावा किया था कि नारायणपुर में 16 से 20 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है, और उनका कहना था कि चूंकि वो सुदूरवर्ती इलाका है, ग्रामीण इलाका है जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती है, तो उन्होंने ये भी आशंका जताई थी कि ये मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन आज राज्य के गृह सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने साफ किया कि नारायणपुर के इलाके में मारे गए ग्रामीणों की संख्या केवल 4 या 5 है। उनका कहना था कि पुलिस अभी तक केवल एक ग्रामीण का शव बरामद कर पाई है। गृह सचिव का कहना था कि जिस इलाके में ये कथित हत्याएं हुई हैं वहां 3 दिनों बाद भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है, और पुलिस के पास जो भी जानकारियां हैं वो केवल ग्रामीणों की सूचनाओं पर आधारित हैं।
जी, और ये पहले जो संख्या इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी, जो 16 और 20 बताई गई थी, ये दावा किया गया था इतने लोग मारे गए हैं, इसकी जानकारी उन्हें कहां से मिली थी?
इसकी बजाबता घोषणा की गई थी। बस्तर के जो आईजी पुलिस हैं शिवराम प्रसाद कलूरी, उन्होंने पुलिस अधीक्षक के हवाले से ये कहा था कि 17 से 20 ग्रामीण मारे गए हैं। लेकिन आज हमारी नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा से भी बातचीत हुई तो उन्होंने फिर से दावा किया कि अभी केवल 4 ग्रामीणों के ही मारे जाने की पुष्टि हुई है। उनका कहना था कि बाकी जो बातें हैं वो खबरें हैं, वो अफवाह हो सकती हैं। उन्होंने आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कलूरी के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें 16 या 20 ग्रामीणों के मारे जाने का दावा किया गया था।
जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रायपुर से स्थानीय पत्रकार आलोक पुतुल। और अब रुक करते हैं क्रिकेट का। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और बेहतरीन क्रिकेटर में से एक मार्टिन क्रो का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। एक श्रद्धांजलि।
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो का आज निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे मार्टिन क्रो सितंबर 2014 में ब्लड कैंसर लिम्फोमा की चपेट में आए थे, लेकिन उसके बाद वो उससे उभर नहीं पाए। क्रो के निधन पर उनके परिवार ने कहा, भारी मन के साथ मार्टिन क्रो का परिवार उनके निधन की सूचना दे रहा है। भारत के पूर्व खिलाड़ी और विकेटकीपर किरण मोरे ने याद किए मार्टिन क्रो के साथ क्रिकेट मैदान पर बिताए कुछ लम्हे।
वर्ल्ड के महान खिलाड़ी थे, उनके साथ मैं 2 वर्ल्ड कप खेला हूँ, 87 और 92।
वो यादें कभी भुलेंगे नहीं। दोनों बार मैंने उनको आउट किया, और 87 वर्ल्ड कप में भी बैंगलोर में उनको आउट किया मैंने स्टंपिंग, और 92 वर्ल्ड कप में भी उनको जो रन आउट किया था मैंने बैक पिक करके, तो यादें कभी नहीं भूलेंगे। मैं क्रिकेटर्स बहुत ही बेहतरीन थे, टॉप क्रिकेटर्स के नाम लेते हो दुनिया में तो उनका एक नाम आता है। वर्ल्ड क्रिकेट की फर्टिलिटी के लिए बहुत ही दुखद समाचार है।
मार्टिन क्रो ने 1982 से 1995 के बीच अपने 13 बरस के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 77 टेस्ट में 45.36 की औसत से 5,444 रन बनाए, इसमें 17 शतक और 50 अर्धशतक शामिल थे। वहीं वनडे में 143 मैचों में क्रो ने 4,704 रन बनाए, जिसमें 34 अर्धशतक और 4 शतक शामिल थे। क्रो का 299 रनों का स्कोर न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर रहा है, जिसे ब्रेंडन मैकलम ने 2014 में 302 रन बनाकर तोड़ा। मार्टिन क्रो ने 8 से 12 नवम्बर 1995 में कटक में भारत के खिलाफ अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला। वहीं 26 नवंबर 1995 को नागपुर में अपने करियर की आखिरी एक दिवसीय मैच की पारी में उन्होंने 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। किरण मोरे ने बताया मार्टिन क्रो की बल्लेबाजी के बारे में।
क्लीन क्रिकेट खेलते थे, ऐसे नहीं कि हम जो बैट पैड बैटिंग करते वैसे नहीं थे, आई थिंक काफी स्ट्रेट बैट से खेलते थे। उनके जो शॉट थे स्क्वायर कट थे, फुल शॉट थे, और जो ड्राइव्स मारते थे ऑन में, तो आई थिंक एक शानदार खिलाड़ी थे, और एक बोलते हैं उनको जो टॉप प्लेयर बोलते हैं, जरूर आई थिंक उनको मिस करेंगे और उनकी यादें हमेशा रहेगी हमारे साथ।
ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर और मार्टिन गुप्टिल के मेंटर भी रहे हैं। क्रो के परिवार में उनकी पत्नी लॉरेन डाउन्स और उनके 2 बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। मार्टिन क्रो ने अपने प्रियजनों के बीच दम तोड़ा।
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो नहीं रहे। और अब खेल की अन्य जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव स्टूडियो में है रजत चाना। रजत, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में जो है मैच चल रहा है, क्या स्थिति है अभी?
जी बिल्कुल, इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन ही बना पाया है 12 ओवर में। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के खिलाफ टॉस तो जीता ही, लेकिन 2 रनों पर ही संयुक्त के 2 विकेट गिर गए। स्वप्निल पाटिल 1 रन पर भुवनेश्वर कुमार की बॉल पर आउट हो गए, और उसके बाद मोहम्मद शहजाद बुमराह की गेंद पर 0 पर आउट हो गए। रोहन मुस्तफ़ा ने पारी को संभाला, पर वो भी हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैच आउट होकर 11 रन पर ही पवेलियन लौट गए। भारत पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है, और इस मैच में कप्तान धोनी ने बेन स्टेन को टेस्ट करने का मौका दिया है, और मैच में हरभजन सिंह, भुवनेश्वर कुमार और नए खिलाड़ी पवन नेगी को मौका दिया गया है। धोनी ने आशीष नेहरा, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को आराम दिया है। लेग स्पिनर पवन नेगी का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है। उधर BCCI सचिव अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से बैठक के बाद उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व T20 का मैच धर्मशाला में आयोजित करने की अनुमति शायद दे देगा। ठाकुर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 19 मार्च को होने वाला मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा, और हिमाचल सरकार ने कहा है कि वो इस मैच की मेजबानी करने की इच्छुक नहीं है फिलहाल, लेकिन ठाकुर ने बुधवार की बैठक के बाद काफ़ी सकारात्मक माहौल बनाया है, उन्हें लगता है ये मैच ज़रूर होगा। वही बैडमिंटन बात करें तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और पारुपल्ली कश्यप ने जर्मन ग्रोपरी के पुरुष एकल मुकाबले के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। श्रीकांत ने हॉलैंड के एरिस मैजिस को 48 मिनट में हराया, और वहीं पारुपल्ली ने आयरिश क्वालिफायर जोशुआ मैगी को 21-12, 21-11 से आसानी से मात दे दी।
खेल समाचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजत, और अब आपकी चिट्ठियां।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति जी, यकीन मानिए और हमारे श्रोताओं से भी मैं ये कहता हूँ कि जब आप चिट्ठी लिखते हैं आपको उम्मीद होती है कि आपकी चिट्ठी BBC के कार्यक्रमों में प्रसारित होगी। हमें भी उम्मीद होती है कि आप चिट्ठी लिखेंगे, हमारे काम की तारीफ करेंगे या आलोचना करेंगे या अपनी राय जाहिर करेंगे। तो इस हफ्ते और दूसरे हफ्तों की तरह ही हम आपकी जो डाक से आई चिट्ठियां हैं खास तौर पर उनको शामिल कर रहे हैं। जिन्होंने इस बार ईमेल लिखा है हम उनको थोड़ा सा निराश कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह है क्योंकि डाक से इतनी ज़्यादा चिट्ठियाँ आई हैं कि हमको उनको थोड़ा सा प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। तो आप शुरू कीजिए स्वाति
जी। मैं जल्दी से शुरू करती हूँ। असद अली की चिट्ठी आई है ज़िला रामपुर उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने यही पहली बात आरोप ही यही है कि आप ईमेल ज़्यादा शामिल करते हैं और चिट्ठियाँ नहीं शामिल करते हैं, आप पीले रंग के पोस्ट कार्ड की तरफ ध्यान ही नहीं देते।
और मैं देख रहा हूँ चारों तरफ आपके या तो पीले रंग के पोस्ट कार्ड हैं या लिफाफे हैं या अंतर्देशीय पत्र हैं नीले रंग के। तो अब ये असद अली जी जो लिखते हैं इनकी सिर्फ हैंडराइटिंग लेख देख करके ही मैं पहचान लेता हूं कि रामपुर के पास एक गांव के रहने वाले हैं। हमारे श्रोता गौर से सुनते हैं और किसानों पर बहुत बारीकी से टिप्पणी करते हैं, किसानों की दिक्कतों पर, तकलीफ़ों पर। असद भाई, शिकायत अब आपको नहीं होनी चाहिए। हर चिट्ठी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार तो आपकी चिट्ठियों का इस्तेमाल होता ही है। दो और पोस्ट कार्ड आपके साथ।
जी हाँ, ऋषिकेश गुप्ता का मलिकपुरा से है, गाजीपुर वाराणसी मंडल से। दरअसल एक आपत्ति की है कि मोहनलाल शर्मा ने जो इंडिया बोल कार्यक्रम पेश किया था जाट आंदोलन पर, वो एक तरफा था और उसमें सिर्फ मुद्दे पर बात हुई, उसके समाधान पर किसी तरह की बात
समाधान की बात। जी हाँ, आप ये बात सही कह रहे हैं और आपकी ये राय है, इसकी हम कद्र करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रखते हैं, समाधान तक पहुंचना आपका काम है और उसके हिसाब से अपनी राजनीतिक समझ बना के राजनीतिक फैसले करना, वो भी आपका काम है। हमारा काम तथ्यों को आप तक पहुंचाना होता है।
दो चिट्ठियां हैं जिनमें इसी तरह की और भी बातें लिखी हुई हैं। ये चिट्ठी हमें भेजी है ओम प्रकाश पाठक ने, नगवा बलिया उत्तर प्रदेश से। कहते हैं कि जेएनयू कांड पर जिस प्रकार की रिपोर्टिंग हो रही है वो अत्यंत ही निराशाजनक है। ये खासतौर से हमारी बात कर रहे हैं कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो इनको शायद, हमारी जो रिपोर्टिंग है वो शायद इनको पसंद नहीं आई है। एक और चिट्ठी इसी तरह की जो ये कहती है कि पिछले 1.5 साल में आप विश्वसनीयता खो रहे हैं और आपके जो कार्यक्रम हैं वो निराशाजनक होते हैं। ये चिट्ठी हमें आई है बहरोड जिला अलवर राजस्थान से रामचंद्र यादव की।
रामचंद्र यादव जी और हमारे वो श्रोता जिन्होंने पोस्टकार्ड भेजा है, उनका नाम है ओम प्रकाश पाठक नगवा बलिया से। आप दोनों से मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपको किसी हमारे कार्यक्रम पर आपत्ति है तो उस कार्यक्रम की तारीख और ये भेजिए कि क्या उसमें ऐसा था जो आपको एक तरफा लगा। देखिए, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि यहां हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में खासतौर पर जेएनयू से संबंधित जो भी रिपोर्टिंग हमने की है उसमें दोनों पक्ष आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जुलूस निकला था, उसकी रिपोर्टिंग हमने की है। हमारी मदद करें आप, हमको बताएं कि इस रिपोर्ट में आपने पूरी एक तरफा बात की है, ऐसा और होना चाहिए था, उदाहरण देके बताएं, क्योंकि हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि दोनों पक्ष सामने आए, चाहे वो इंडिया बोल में हों या दूसरे किसी कार्यक्रम में। लेकिन कुछ लोग जरूर हम पे आरोप लगाते हैं और हमने इससे आंखें बंद नहीं की हैं। इन आरोपों के प्रति हम सजग हैं, सचेत हैं, कोशिश करेंगे अगर इन आरोपों में कोई दम हुआ तो हम दुरुस्त करने को भी और अपनी गलती मानने को भी तैयार हैं।
और आपकी इस बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखते हैं भुवनेश्वर महंत, जिन्होंने जांजगीर से हमें चिट्ठी लिखी है और ये कहते हैं कि इंडिया बोल ये बताने में 100% कामयाब रहा कि किस तरह से मीडिया बटा हुआ है जेएनयू के मसले पर।
एक और चिट्ठी ये मैं देख रहा हूँ, ईमेल, हालांकि मैंने कहा था ईमेल नहीं लेंगे, लेकिन एक ईमेल मैं आपके पास देख रहा हूँ।
जी हाँ, ये ईमेल हमें भेजा है नवीन शर्मा ने चिराग दिल्ली से और इनका कहना ये है कि आपके समाचारों में आलोचनात्मक मूल्यांकन सही तरह से नहीं हो रहा है सरकार की नीतियों का, क्योंकि सिर्फ समाचार पहुंचाना ही काम नहीं है। पिछले 2 वर्षों में सरकार की ओर से मंत्रालयों में कितना काम हुआ है, कितना खर्च हुआ है, इस पर कोई भी बात नहीं की।
देखिए, अब हमारे कुछ श्रोता ये कहते हैं कि एक तरफा कार्यक्रम हुआ और ये हमारे जो श्रोता है नवीन शर्मा चिराग दिल्ली से, इनकी शिकायत है कि साहब हम सरकार की आलोचना ही नहीं करते हैं। अब आप बताइए स्वाति, हम क्या करें?
मेरे ख्याल से हम लोग लगातार कार्यक्रमों में ऐसा करते हैं। होता यह कि हमारे 4 कार्यक्रम हैं, उनमें से 2 में अगर हमने एक पक्ष लिया है, दूसरे 2 में हम दूसरा पक्ष लेने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है, और उस तरह से हमें
मतलब कुल मिला के यह है कि अगर आप सभी कार्यक्रम सुने तो आपको लगेगा कि हम किसी न तो राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं न ही आलोचना करते हैं। जिस तरह से जो भी स्थिति समाज में होती है उसको हम परावर्तित करते हैं एक आईने की तरह। अब मुझे लगता है कि समय बहुत हो गया है।
हाँ।
तो श्रोताओं से विदा लें और चलते चलते बताएं अपना पता। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3005, नई दिल्ली 110003 और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे राजेश जोशी और स्वाति बख्शी। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आज कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेस की पूर्व सरकारों की योजनाओं पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि सदन को न चलने देने से विपक्ष का नुकसान होगा। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने आर्थिक कारणों से आने वाले गैरकानूनी प्रवासियों से यूरोप नहीं आने की अपील की है। फ्रांस के कैले में सुरक्षा और प्रवासी संकट पर बातचीत के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलां और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के बीच मुलाकात जारी है। करीब 4,000 प्रवासी फ्रांस के कैले में जंगल के नाम से प्रवासी कैंप में बुरी स्थिति में रहने को मजबूर है। जर्मनी की पुलिस ने कहा है कि बर्लिन में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए भर्तियां करने के संदिग्ध एक जर्मन डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।